आप सुन रहे हैं सुनो किताब।
हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई एम देवांगना द्विवेदी एंड टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद फिफ्थ चैप्टर ऑफ हिस्ट्री जिसका नाम है व्हेन पीपल रिबेल 1857 एंड आफ्टर। तो मेनली इस चैप्टर में हम रिवोल्ट ऑफ 1857 और उसके बाद जब लोगों ने क्रांति जब फैलाई थी उसके बारे में पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट सी द फिगर 1। सिपॉयज एंड पीजेंट्स गैदर फोर्सेस फॉर द रिवोल्ट दैट स्प्रेड अक्रॉस द प्लेन्स ऑफ नॉर्थ इंडिया इन 1857। तो ये रिवोल्ट ऑफ 1857 है जिसमें सिपॉयज और पीजेंट लड़ाई कर रहे हैं और ये जो जो पीजेंट्स हैं वो अपना प्रोटेस्ट दिखा रहे हैं। नाउ कम टू द टॉपिक पॉलिसीज एंड द पीपल। इन द प्रीवियस चैप्टर्स वी लुक्ड एट द पॉलिसीज ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी एंड द इफेक्ट दे हैड ऑन डिफरेंट पीपल। किंग्स, क्वींस, पीजेंट्स, लैंडलॉर्ड्स, ट्राइबल्स, सोल्जर्स वर ऑल अफेक्टेड इन डिफरेंट वेज। यू हैव ऑल्सो सीन how people resist policies and actions that harm their interest or go against their sentiments. तो previous chapter में आपने देखा कि जो ब्रिटिशर्स की यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी की जो पॉलिसीज थी वो कितना ज्यादा इफेक्ट किया है अलग अलग लोगों की लाइफ को, जैसे कि जो किंग थे उस टाइम के, क्वीन थे, पीजेंट थे, लैंडलॉर्ड्स थे, ट्राइबल पीपल थे, सोल्जर थे, सबकी लाइफ को उन्होंने डिफरेंट वेज में इफेक्ट किया है। तो आपने ये भी देखा था कि लोगों ने उनकी कुछ पॉलिसीज को रेजिस्ट भी किया था और जो चीजें उनकी इंटरेस्ट को हार्म कर रही थी या उनके सेंटिमेंट को हार्म कर रही थी उन सारी पॉलिसीज को उनने प्रोटेस्ट किया था। नाउ कम टू द टॉपिक नवाब्स लूज देयर पावर। सिंस द मिड 18th सेंचुरी नवाब्स एंड राजास हैड सीन देयर पावर इरोड। दे हैड ग्रेजुअली लॉस्ट देयर अथॉरिटी एंड ऑनर। प्रेसिडेंट्स हैड बीन स्टेशन इन मेनी कोर्ट्स। द फ्रीडम ऑफ द रूलर्स reduced, their armed forces disbanded and their revenues and territories taken away by stages. तो mid 18th century के time पर जो नवाब और राजा वगैरह थे उनके power को खत्म कर दिया था ब्रिटिशर्स ने और उनकी अथॉरिटी ऑनर सब कुछ खत्म कर दिया था। जो फ्रीडम था रूलर्स का वो कम कर दिया था, उनके जो आर्म्ड फोर्सेज थे उनको बैन कर दिया था, उनसे बहुत ज्यादा रेवेन्यूज लिया जाता था। मेनी रूलिंग फैमिलीज ट्राई टू नेगोशिएट विद द कंपनी टू प्रोटेक्ट देयर इंटरेस्ट। फॉर एग्जाम्पल रानी लक्ष्मीबाई ऑफ झांसी वॉन्टेड द कंपनी टू रिकग्नाइज हर अडोप्टेड सन एज द हायर टू द किंगडम आफ्टर द डेथ ऑफ हर हजबेंड। नाना साहेब द अडोप्टेड सन ऑफ पेशवा बाजीराव टू प्लीडेड दैट ही बी गिवन हिज फादर्स पेंशन व्हेन द लेटर डाइड। हाउएवर द कंपनी कॉन्फिडेंट ऑफ इट्स सुपीरियोरिटी एंड मिलिट्री पावर्स टर्न डाउन दीज प्लीज। तो कुछ रूलिंग फैमिलीज ऐसी थी जो नेगोशिएट करना चाह रही थी इस बात पर, क्योंकि कंपनी का ये रूल था कि अगर कोई राजा मर जाएगा उसका कोई सक्सेसर उसका खुद का बेटा नहीं होगा तो वो जो पूरा एरिया है जो टेरिटरी है वो कंपनी के कंट्रोल में आ जाएगी। तो रानी लक्ष्मीबाई जो रानी ऑफ झांसी थी उन्होंने बोला कि मेरा जो अडॉप्टेड बेटा है आप उसको यहाँ का हायर ऑफ द किंगडम समझिए, उसको आप हायर ऑफ द किंगडम मानिए, मतलब कि अब अगला राजा इसको बनाना है तो इसलिए आप यहाँ पर कैप्चर मत करिए। लेकिन उन्होंने ये सब कुछ भी नहीं सुना एंड ऑल्सो उनसे वॉर कर लिया। अवध वॉज द वन ऑफ द लास्ट टेरिटरीज टू बी एनेक्स्ड इन 1801। अ सब्सिडियरी अलायंस वॉज इम्पोज्ड ऑन अवध एंड इन 1856 इट वॉज टेकन ओवर। गवर्नर जनरल डलहौजी डिक्लेयर्ड दैट द टेरिटरी वॉज बींग मिसगवर्न्ड एंड ब्रिटिश रूल वॉज नीडेड टू इंश्योर प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन। अवध वो लास्ट टेरिटरी का पार्ट था जो कि इन लोगों ने अपने कब्जे में लिया था 1801 में, जो सब्सिडरी अलायंस इन्होंने इम्पोज किया था अवध पर, और 1856 में जब वो पूरा अवध है जो गवर्नर जनरल डलहौजी ने ले लिया था तो उन्होंने ये डिक्लेयर किया कि पूरा जो ये टेरिटरी है ये मिसगवर्न है, यहाँ पर ब्रिटिश रूल की, ब्रिटिश गवर्नमेंट की बहुत ज्यादा एक प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन की बहुत ज्यादा जरूरत है। द कंपनी इवन बिगैन टू प्लान हाउ टू ब्रिंग द मुगल डायनेस्टी टू एन एंड। The name of the Mughal king was removed from the coins minted by the company. In 1849, Governor General Dalhousie announced that after the death of Bahadur Shah Zafar, the family of the king would be shifted out of the Red Fort and given another palace place in Delhi to reside in. So, company ne phir plan kiya ki Mughal dynasty ko bhi hum khatam kar dete hain. To Mughal king का जो नाम लिखा रहता था, जो कॉइन्स था उसमें इम्प्रिंटेड रहता था, तो कंपनी ने उसको हटाना शुरू कर दिया। और 1849 में जो गवर्नर जनरल था डलहौजी उन्होंने अनाउंस किया कि बहादुर शाह की डेथ के बाद उनकी जो फैमिली है उनको रेड फोर्ट से निकालकर दूसरे प्लेस में शिफ्ट किया जाएगा। In 1856, Governor General Canning decided that Bahadur Shah Zafar would be the last Mughal king, and after his death, none of his descendants would be recognized as kings. They would just be called princes. तो 1856 में जो गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग थे, उन्होंने ये डिसाइड किया कि बहादुर शाह जफर के मरने के बाद हम इनको लास्ट मुगल किंग डिस्क्राइब करते हैं, और इनके मरने के बाद इनका कोई भी डिसेंडेंट किंग के रूप में नहीं रिकग्नाइज किया जाएगा, वो सिर्फ प्रिंस कहलाएगा. नाउ कम टू द टॉपिक, द पीजेंट्स एंड द सिपॉयज. इन द कंट्री साइड, पीजेंट्स एंड जमींदार्स रिसेंडेड द हाई टैक्सेस एंड द रिजिड मेथड्स ऑफ रेवेन्यू कलेक्शन. Many failed to pay back their loans to the money lenders and gradually lost the lands they had tilted for generations. तो पूरे भारतवर्ष में जो peasants थे और जमींदार थे, वो high tax जो rate जो थे उसको resist कर रहे थे. बहुत rigid methods जो थे revenue collection के, उसको protest कर रहे थे, क्योंकि उनकी पूरी life ही change हो गई थी. उनके ऊपर बहुत ज्यादा debt burden आ जा रहा था, poverty में चले जा रहे थे, इसलिए वो चाहते थे कि ये सारी चीजें ना हो. उन्होंने अपने सारे लैंड खो दिए थे जो वो जनरेशन से, मतलब उसमें खेती करते हुए आ रहे हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी खेती करते हुए आ रहे हैं, तो उनकी वो जो लैंड थी, जो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी थी, वो खो चुके थे, इसलिए उन लोगों ने प्रोटेस्ट किया. द इंडियन सिपॉयज इन द एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी ऑल्सो हैड रीजंस फॉर डिसकंटेंट. दे वर अनहैप्पी अबाउट देयर पे अलाउंसेस एंड कंडीशंस टू ऑफ सर्विस. तो जो इंडियन सिपॉयज थे, यानी कि जो भारतीय सैनिक थे जो कि कंपनी द्वारा एम्प्लॉय किए गए थे, उनके भी कुछ अलग अलग रीजंस थे प्रोटेस्ट करने के. वो अपने जो पैसे उनको मिलता था उससे खुश नहीं थे, अलाउंसेस से खुश नहीं थे, और कंडीशन ऑफ सर्विस से खुश नहीं थे. सम ऑफ द न्यू रूल्स मोर ओवर वायलेटेड देयर रिलीजियस सेंसिटिबिलिटीज एंड बिलीव. डिड यू नो दैट इन दोज डेज मेनी पीपल इन द कंट्री बिलीव दैट इफ दे क्रॉस द सी दे वुड लूज देयर रिलीजन एंड कास्ट. कुछ नए रूल भी आए थे उस टाइम पर जिन्होंने रिलीजियस सेंसिबिलिटीज और बिलीव्स को वायलेट किया था. उस टाइम पर लोग ये सोचते थे कि अगर किसी ने सात समंदर पार करके और कोई दूसरी कंट्री में चला जाता है, तो वो अपना रिलीजन और कास्ट लूज कर देता है, खो देता है. सो व्हेन इन 1824 द सिपॉयज वर टोल्ड टू गो टू बर्मा बाय द सी रूट टू फाइट फॉर द कंपनी, दे रिफ्यूज टू फॉलो द ऑर्डर. दो दे एग्रीड टू गो बाय द लैंड रूट, they were severely punished, and since the issue did not die down. In 1856, the company passed a new law which stated that every new person who took up employment in the company's army had to agree to serve overseas if required. तो जब कंपनी ने 1824 में बोला सारी सेना से कि बर्मा जाओ, हमारे लिए फाइट करो, वहां पर सी रूट के थ्रू जाओ, तो इन लोगों ने मना कर दिया. और जब इन लोगों ने मना कर दिया तो इनको बहुत ज्यादा पनिश किया गया बैडली. और उसके बाद एक न्यू लॉ इन लोगों ने निकाला 1856 में, एक न्यू लॉ निकाला जिसमें इन्हें बोला कि कोई भी नया पर्सन जो कि कंपनी के आर्मी में एम्प्लॉयड होगा, उसको सारी जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं वो एग्री करनी पड़ेगी, और उसको समुद्री यात्रा भी करनी पड़ेगी अगर जरूरत पड़ी तो. सिपॉयज ऑल्सो रिएक्टेड टू वॉट वॉज हैपनिंग इन द कंट्री साइड. मेनी ऑफ देम वर पीजेंट्स एंड हैड फैमिलीज लिविंग इन द विलेजेस. So the anger of the peasants quickly spread among the sepoys. तो सिपॉय जो थे उन्होंने रिएक्ट किया था जो उनके साथ हो रहा था उस पर, और उसमें से ज्यादातर जो थे वो peasants थे जिनकी फैमिली villages में रहती थी, तो उनका जो गुस्सा था peasants का वो बहुत जल्दी स्प्रेड हो गया सिपॉयज में. peasants का जो गुस्सा था, जो उनकी दुख, जो भी सारी चीजें थी, वो भारतीय जो soldiers थे जो कि कंपनी के लिए काम कर रहे थे, उनमें स्प्रेड हो गया था. Now come to this activity. Imagine you are sepoy in the company army advising your nephew not to take employment in the army. What reasons would you give? तो आपने अभी तक ये जो पढ़ा है इसके बेसिस पर आप क्या reasons दोगे? That you have to tell. Now come to next page. Responses to reforms. The British believed that Indian society had to be reformed. Laws were passed to stop the practice of sati and to encourage the remarriage of widows. English language education was actively promoted. After 1830, the company allowed Christian missionaries to function freely in its domain and even own land and property. British ये believe करते थे कि Indian society को reform करना बहुत ज्यादा जरूरी है. अलग अलग laws pass किए गए ताकि जो practice of sati है और remarriage है, जो remarriage of widows जो है, उसको encourage किया जाए. sati में क्या होता था कि अगर किसी के husband की death हो गई है, तो उस wife को, उस widow wife को अपने हस्बैंड के शव के साथ, यानी कि उसकी लाश के साथ चिता में जला दिया जाता था जिंदा. और विडो री मैरिज इसलिए बोला गया था क्योंकि बहुत कम एज में शादी हो जाती थी, 14-15 साल में लड़कियों की शादी हो जाती थी, और अगर उनके पति मर जाते थे तो फिर उनको मतलब बहुत ही अलग जीवन जीना पड़ता था अकॉर्डिंग टू इंडियन सोसाइटी। इंग्लिश लैंग्वेज की जो एजुकेशन है वो प्रमोट की गई। फिर 1830 के बाद उन्होंने क्रिश्चियन मिशनरीज को फ्रीली फंक्शन करने के लिए बोल दिया था अपने अंडर, अपने डोमेन में, और अब वो लैंड और प्रॉपर्टी भी खरीद सकते थे। इन 1850 अ न्यू लॉ वॉज पास टू मेक कन्वर्जन टू क्रिश्चियनिटी ईजियर। दिस लॉ अलाउड एन इंडियन हु हैड कन्वर्टेड टू क्रिश्चियनिटी टू इनहेरिट द प्रॉपर्टी ऑफ हिज एंसेस्टर्स। 1850 में एक नया लॉ पास किया गया जिसमें आप अपने धर्म से क्रिश्चियनिटी में, क्रिश्चियन धर्म में इजीली कन्वर्ट हो सकते थे, और ये जो न्यू लॉ था उसमें वो इंडियन जो कन्वर्ट हुआ है क्रिश्चियनिटी में वो अपने एंसेस्टर की प्रॉपर्टी रख सकता था, भले उसके एंसेस्टर क्रिश्चियंस नहीं थे तो भी। मेनी इंडियंस बिगैन टू फील दैट द ब्रिटिश वर डिस्ट्रॉइंग देयर रिलीजन, देयर सोशल कस्टम्स एंड देयर ट्रेडिशनल वे ऑफ लाइफ। तो बहुत से इंडियंस ये सोचने लग गए थे कि जो ब्रिटिशर्स हैं हमारे रिलीजन को खत्म कर रहे हैं, हमारे सोशल कस्टम और ट्रेडिशनल वे ऑफ लाइफ को रियून कर रहे हैं, खराब कर रहे हैं। देयर वर ऑफ कोर्स अदर इंडियंस हु वांटेड टू चेंज एग्जिस्टिंग सोशल प्रैक्टिसेस। यू विल रीड अबाउट दीज रिफॉर्म्स एंड रिफॉर्म मूवमेंट्स इन चैप्टर 7। तो और ऐसे भी इंडियंस थे जो इन सोशल प्रैक्टिसेस को, एग्जिस्टिंग सोशल प्रैक्टिसेस को खत्म करना चाहते थे। इसके बारे में हम डिटेल में चैप्टर 7 में पढ़ेंगे। नाउ कम टू फिगर 2, सिपॉयज एक्सचेंज न्यूज एंड रूमर्स इन द बाजार्स ऑफ नॉर्थ इंडिया। तो ये सिपॉयज हैं जो कि ब्रिटिश टाइम के, तो वो न्यूज और रूमर्स वगैरह जो हैं बाजार्स ऑफ नॉर्थ इंडिया में बातें कर रहे हैं। नाउ कम टू द टॉपिक, थ्रू द आईज ऑफ द पीपल टू गेट अ ग्लिम्स ऑफ व्हाट पीपल वर थिंकिंग दोज डेज अबाउट ब्रिटिश रूल, स्टडी सोर्सेज 1 और 2। अब लोग उस टाइम क्या सोचते थे उसके बारे में हम ये दो सोर्सेज में पढ़ेंगे। नाउ कम टू सोर्स 1, द लिस्ट ऑफ 84 रूल्स गिवन हियर आर एक्सर्प्ट फ्रॉम द बुक माझा प्रवास रिटन बाय विशुभट गोडसे, अ ब्राह्मण फ्रॉम अ विलेज इन महाराष्ट्र। He and his uncle had set out to attend a yojana being organized in Mathura. Vishnu Bhatt writes that they met some sepoys on the way who told them that they should not proceed on the journey because a massive upheaval was going to break out in 3 days. The sepoys said, यहाँ पर एक जो बुक थी माझा प्रवास जो कि विष्णु भट्ट गोडसे ने लिखी थी, एक ब्राह्मण थे जो कि महाराष्ट्र में रहते थे, वो अपने अंकल के साथ एक यजना जो था, यज्ञ जो होता है मथुरा में, वहां जाना चाह रहे थे। तो विष्णु भट्ट जब लिखते हैं कि उनको कुछ सेपॉयज मिले थे और वो ये बोल रहे थे कि आपको आगे प्रोसीड नहीं करना चाहिए अपनी जर्नी में क्योंकि यहाँ पर अब एक बहुत ही मैसिव अपहीवल यानी कि रिवोल्ट ब्रेक होने वाला है। अब सेपॉयज ने क्या बोला वो देखिए। The English were determined to wipe out the religions of the Hindus and the Muslims. They had made a list of 84 rules and announced these in a gathering of all big kings and princes in Calcutta. They said that the kings refused to accept these rules and warned the English of dire consequences and massive upheaval if these are implemented. That the kings all returned to their capitals in great anger, all the big people began making plans. A date was fixed for the war of rebellion and secret plan had been circulated from the cantonment in Meerut by letters sent to different cantonments. तो वो ये बता रहे हैं कि जो Englishmen हैं, जो East India Company के Britishers हैं, उन्होंने हमारे जो religions हैं हिंदू मुस्लिम को wipe out करने की कोशिश करी है। उन्होंने एक list बनाया है 84 rules का जो कि उन्होंने जो सारे बड़े kings थे और princes थे Calcutta में उनकी gathering में सुनाया, और उन्होंने बोला कि अगर कोई इस रूल को एक्सेप्ट नहीं करेगा तो उसके साथ अच्छा नहीं होगा, उस किंग वगैरह को बोला उन्हें, किंग ऑफ प्रिंसेस को। तो जब वो लोग अपने कैपिटल्स लौटे थे किंग्स ऑफ प्रिंसेस, तो वो लोग बहुत गुस्से में थे और काफी बड़े बड़े लोगों ने प्लान्स बनाए, एक दिन फिक्स किया जिसमें जिस दिन वो लोग ये जो रिबेलियन वॉर है इसको अंजाम देंगे। तो ये जो पूरा मामला था एक कंटोनमेंट से दूसरे कंटोनमेंट में लेटर्स के थ्रू सर्कुलेट हो रहा था। नाउ कम टू सोर्स 2 ऑन नेक्स्ट पेज, देयर वॉज सून एक्साइटमेंट इन एवरी रेजिमेंट। Another account we have from those days are the memories of Subedar Sitaram Pandey. Sitaram Pandey was recruited in 1812 as a sepoy in Bengal Native Army. Dusra account hame us time ka milta hai Subedar Sitaram Pandey ke ek account se, usko recruit unko kiya gaya tha 1812 mein Bengal Native Army mein. He served the English for 48 years and retired in 1860. He helped the British to suppress the rebellion though his own son was a rebel and was killed by the British in front of his eyes. On retirement, he was persuaded by a commanding officer, Norgay, to write his memoirs. He completed the writing in 1861 in Awadhi, and Norgay translated it to English and had it published under the title From Sipoy to Sobedar. उन्होंने 48 years तक सर्विस करी थी, 1860 में वो रिटायर हो गए थे. उन्होंने ब्रिटिशर्स को हेल्प किया था जो रेबेलियन वॉर्स होते थे उसको सप्रेस करने में, उसको दबाने में. ऑल्दो उनका खुद का बेटा एक रेबेल था, एक बागी था, जिसको ब्रिटिशर्स ने उसकी आंखों के सामने मार डाला था. तो अपने रिटायरमेंट के बाद जब उनको कमांडिंग ऑफिसर जो थे नॉर्गे, तो उन्होंने बोला कि तुम अपनी मेमोरीज लिखो. तो उन्होंने अपनी वो जो राइटिंग थी वो कंप्लीट कर ली थी 1861 में अवधी लैंग्वेज में. तो नॉर्गे ने उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया और पब्लिश कर दिया उसको अंडर द टाइटल फ्रॉम सिपॉय टू सुबेदार. Here is an excerpt from the Sitaram Pandey Road. It is my humble opinion that this seizing of oath filled the minds of the sepoys with distrust and led them to plot against the government. Agents of the Nawab of Oath and also of the King of Delhi were sent all over India to discover the temper of the army. They worked upon the feelings of sepoys, telling them how treacherously the foreigners had behaved towards the king. They invented 10,000 lies and promises to persuade the soldiers to mutiny and turn against his masters, the English, with the object of restoring the Emperor of Delhi to the throne. They maintained that this was wholly within the army's power if the soldiers would only act together and do as they were advised. So, उन्होंने लिखा कि in my humble opinion, ये जो औध था यानी कि जो मिलिट्री थी वो पूरी तरीके से लोगों के यानी कि सिपोइस के माइंड में डिस्ट्रस्ट पैदा कर दिया था गवर्नमेंट के अगेंस्ट में. और जो एजेंट्स थे नवाब ऑफ औध के और बाकी के किंग के, उन लोगों ने क्या किया था कि जितने सिपोइस थे आर्मी थी उन पर टेंपर उनका बढ़ा दिया था. उन लोगों ने बहुत ये सब चीजें बताई कि किंग के साथ ऐसा किया गया है और बहुत ही मिसबिहेव किया है ब्रिटिशर्स ने, और इसकी वजह से उनको बोला गया कि तुम अपने जो मास्टर्स है यानी कि इंग्लिश मास्टर्स जो हैं ब्रिटिशर्स हैं उनके अगेंस्ट हो जाओ, और वही एडवाइस किया गया उन्हें. यू कैन सी फिगर 3, रिबेल सिपॉयज एट मेरठ अटैक ऑफिसर्स एंटर देयर होम्स एंड सेट फायर टू बिल्डिंग्स. तो ये रिबेल सिपॉयज हैं. नाउ कम टू नेक्स्ट पेज, सोर्स टू कॉन्ट्रडिक्शन कंटिन्यू. It chanced that about this time the Sarkar sent parties of men for each regiment to different garrisons for instructions in the use of the new rifle. These men performed the new drill for the some time until a report got about some means or the other that the cartridges used for the new rifles were greased with the fat of cows and pigs. The men from our regiment wrote to others in regiment telling them about this, and there was soon excitement in every regiment. Some men pointed out that in 40 years service nothing had ever been done by the Sarkar to insult their religion. But as I have already mentioned, the sepoy's mind had been inflamed by the seizure of oath. उसके बाद क्या हुआ था कि सरकार ने पार्टीज भेजी अलग अलग जो मेन्स थी उनकी अलग अलग रेजिमेंट में, क्योंकि वो यूज ऑफ न्यू राइफल के बारे में बताना चाह रहे थे. तो लोगों ने जो नई ड्रिल थी उसको कुछ टाइम तक परफॉर्म किया, जब तक उनको ये रिपोर्ट नहीं मिल गई थी कहीं से ये जो कार्टिजेस यूज किए जाते हैं नए राइफल को ग्रीस करने के लिए वो काऊ और पिक्स के फैट से यूज किए जाते हैं. तो जो उनके रेजिमेंट के जो लोग थे और बाकी के रेजिमेंट के जो लोग थे उनको जब ये पता चला तो उनमें काफी ज्यादा एक्साइटमेंट हो गई, और सब लोगों ने मतलब काफी लोगों ने बोला कि हमारे 40 साल की सर्विस में ऐसा कभी भी नहीं हुआ है कि सरकार ने हमारी रिलीजन की इंसल्ट करी हो. और जैसे कि इन्होंने बताया कि सिपॉयस के दिमाग में सीजर ऑफ औध ने पहले ही इतना ज्यादा भड़क डाल के रखी हुई थी, मतलब इतना ज्यादा भड़के हुए थे ये लोग. Interested parties were quick to point out that the great aim of the English was to turn us all into Christians, and they had therefore introduced the cartridge in order to bring this about, since both Mohammedans and Hindus would be defiled by using it. So, जो सिपॉयस थे उनने ये सोचा, उनने ये point out किया कि जो English men हैं वो हमें Christians में कन्वर्ट करना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने कार्टेज जो कार्टेज है उसको इंट्रोड्यूस किया है, क्योंकि मोमेडन्स और हिंदूज जो है दोनों इसको यूज नहीं करेंगे, डिफाइल करेंगे यूज करने में, क्योंकि मोमेडन्स काउ फैट ही यूज करेंगे और जो हिंदूज हैं वो पिक फैट नहीं यूज करेंगे. द कर्नल साहेब वॉज ऑफ द ओपिनियन दैट द एक्साइटमेंट विच इवन ही कुड नॉट फेल टू सी वुड पास ऑफ एज इट हैड डन बिफोर एंड ही रिकमेंडेड मी टू गो टू माई होम. तो जो कर्नल साहब थे उन्होंने बोला कि ये जो एक्साइटमेंट है, ये जो जोश है, ये खत्म हो जाएगा जैसे पहले हुआ था, और उन्होंने मुझे रेकमेंड किया कि तुम अपने घर चले जाओ. नाउ कम टू दिस एक्टिविटी. फर्स्ट वन इज व्हाट वर द इम्पोर्टेंट कंसर्न्स इन द माइंड्स ऑफ द पीपल अकॉर्डिंग टू सीताराम एंड अकॉर्डिंग टू विष्णु भट्ट. सेकेंड, व्हाट रोल डिड दे थिंक द रूलर्स वर प्लेइंग, व्हाट रोल डिड द सिपाहीज सीम टू प्ले. नाउ कम टू द न्यू टॉपिक, अ म्यूटिनी बिकम्स अ पॉपुलर रेबेलियन. Those struggles between rulers and the ruled are not unusual. Sometimes such struggles become quite widespread as a popular resistance, so that the power of the state breaks down. A very large number of people begin to believe that they have a common enemy and rise up against the enemy at the same time. For such a situation to develop, people has to organize, communicate, take initiative and display the confidence to turn the situation around. जो स्ट्रगल्स थे रूलर्स के बीच में वो काफी अनयूजुअल थे, और कई बार तो ये स्ट्रगल इतने ज्यादा वाइड स्प्रेड हो जाते थे, पॉपुलर हो जाते थे, कि जो पावर ऑफ स्टेट है वो ब्रेक डाउन हो जाती थी. और बहुत ही लार्ज नंबर ऑफ पीपल को ये लगता था कि हम सब एक ही दुश्मन है, कॉमन एनिमी है, और सब उसके अगेंस्ट राइज अप हो जाते थे, उसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट करना शुरू कर देते थे, कम्युनिकेट करते थे, आपस में ऑर्गेनाइज करते थे सब चीजें, एक इनिशिएटिव लेते थे और अपना जो कॉन्फिडेंस है उसे डिस्प्ले करते थे. सच अ सिचुएशन डेवलप्ड इन द नॉर्दर्न पार्ट्स ऑफ द इंडिया इन 1857. आफ्टर 100 इयर्स ऑफ कॉन्क्वेस्ट एंड एडमिनिस्ट्रेशन द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी फेस्ड अ मैसिव रेबेलियन दैट स्टार्टेड इन मे 1857 एंड थ्रेटन्ड द कंपनीज वेरी प्रेजेंस इन इंडिया. तो एक ऐसी ही सिचुएशन डेवलप हुई थी नॉर्दर्न पार्ट्स ऑफ इंडिया में 1857 में, जिसको रिवोल्ट ऑफ 1857 भी बोला जाता है. 100 साल के कॉन्क्वेस्ट के बाद और एडमिनिस्ट्रेशन पावर के बाद इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी को एक बहुत बड़ा मैसिव क्रांति, रेबेलियन यानी कि क्रांति फेस करनी पड़ी थी इन मे 1857, जिसको रिवोल्ट ऑफ 1857 भी बोला जाता है, जिसमें कंपनी को अपनी प्रेजेंस का बहुत ज्यादा खतरा हो रहा था, डर लग रहा था कि अब वो बचेंगे इंडिया में कि नहीं. सिपाहीज म्यूटिनीड इन सेवरल प्लेसेस बिगिनिंग फ्रॉम मेरठ एंड अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल फ्रॉम डिफरेंट सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी रोज अप इन रेबेलियन. Some regard it as the biggest armed resistance to colonialism in the 19th century anywhere in the world. तो कंपनी को डर लग रहा था क्योंकि जितने भी सिपाहीज थे उन लोगों ने कंपनी के अगेंस्ट हो गए थे मेरठ से, और जितने भी अलग अलग एरियाज थे वहां से लार्ज सेक्शंस में लोग रिबेलियस हो गए थे, क्रांति शुरू कर दी थी उन्होंने, और जो बिगेस्ट आर्म रेजिस्टेंस था कोलोनिज्म के अगेंस्ट 19th सेंचुरी में हर जगह हो रहा था. You can see the meaning of mutiny when soldiers as a group disobey their officers in the army. मतलब अपने masters का, अपने officers का कहा ना मानना, उसे mutiny कहते हैं. Come to next page. See figure 4, the battle in the cavalry lines. On the evening of 3rd July 1857, over 3,000 rebels came from Bareilly, crossed the river Jamuna, entered Delhi and attacked the British cavalry force. The battle continued all through the night. 3rd of July 1857 को 3,000 रेबेल्स आए थे, क्रांतिकारी आए थे बरेली से, जो कि जमुना नदी को क्रॉस करके दिल्ली में एंटर हो गए थे, और उन्होंने ब्रिटिश कैलवरी पोस्ट जो था वहां पर अटैक कर दिया था. पूरी रात ये बैटल चला था. नाउ कम टू द टॉपिक, फ्रॉम मेरठ टू दिल्ली. ऑन 29th March 1857 अ यंग सोल्जर मंगल पांडे वॉज हैंग टू डेथ फॉर अटैकिंग हिज ऑफिसर्स इन बैरकपुर. सम डेज लेटर सम सिपाहीज ऑफ द रेजिमेंट एट मेरठ रिफ्यूज टू डू द आर्मी ड्रिल यूजिंग द न्यू कार्टेजेस which were suspected of being coated with the fat of cows and pigs. 85 sepoys were dismissed from the service and sentenced to 10 years in jail for disobeying their officers. This happened on 9th May 1857. So, March 29, 1857 को एक जो young soldier था मंगल पांडे, आपने नाम भी सुना होगा इनका बहुत ज्यादा, तो इनको फांसी पर चढ़ा दिया गया था क्योंकि इन्होंने बैरकपुर में अपने officers पर attack किया था. और कुछ दिन बाद कुछ सिपाहीज ने जो कि मेरठ रेजिमेंट के थे उन लोगों ने आर्मी ड्रिल करने से मना कर दिया था जो न्यू कार्टेजेस से उसके यूज से, क्योंकि उनको शक था कि ये काऊ और पिग के फैट से कोटेड है. तो 85 जो सिपाहीज थे उनको उनकी सर्विस से निकाल दिया गया और 10 साल की जेल सुना दी गई इस गुनाह पर कि उन्होंने अपने ऑफिसर्स का रूल नहीं माना. और ये हुआ था 9th of May 1857 को. The response of the other Indian soldiers in Meerut was quite extraordinary. On 10th May, the soldiers marched to the jail in Meerut and released the imprisoned sepoys. They attacked and killed British officers, they captured guns and ammunition and set fire to the buildings and properties of the British and declared war on the Firangis. तो इस रेबेलियन के मतलब रिस्पॉन्स में इंडियन सोल्जर जो मेरठ में थे उन्होंने तो कुछ ज्यादा ही एक्स्ट्रॉर्डनरी किया. 10th May को सोल्जर गए मार्च करके जो जेल थी मेरठ में वहां पर, और जितने भी सिपाही जिनको जेल में डाला गया था उनको रिलीज कर दिया. ब्रिटिश ऑफिसर्स पर अटैक करके उन्हें किल किया. जितने गन्स और जितने भी आर्म्स एंड एम्युनिशन थे सबको बटोर लिया उन्हें, अपने पास ले लिया और जो बिल्डिंग है उनमें आग लगा दी, जो प्रॉपर्टीज थी ब्रिटिशर्स की. और जो ये वॉर है उसको फिरंगीज के अगेंस्ट में डिक्लेयर कर दिया. The soldiers were determined to bring an end to their rule in the country, but who would rule the land instead? The soldiers had an answer to this question, the Mughal Emperor Bahadur Shah Zafar. तो soldiers चाहते थे कि हम इनकी जो सत्ता है उसको हम बंद करना चाहते हैं, इनका जो rule है उसको end करना चाहते हैं, but उस land पर फिर rule कौन करेगा? तो soldiers का answer था कि जो Mughal Emperor है Bahadur Shah Zafar वो rule करेंगे. The sepoys of Meerut rode all night of 10th May to reach Delhi in the early hours next morning. As news of their arrival spread, the regiment stationed in Delhi also rose up in rebellion. Again, British officers were killed, arms and ammunition seized, buildings set on fire. Triumphant soldiers gathered around the walls of Red Fort where the Badshah lived, demanding to meet him. The emperor was not quite willing to challenge the mighty British power, but the soldiers persisted. They forced that they their way into the palace and proclaimed Bahadur Shah Zafar as their leader. जो सिपाही थे मेरठ के पूरी रात उन्होंने ट्रेवल किया 10 मई को और वो दिल्ली रीच मतलब दिल्ली पहुंचे वो सुबह सुबह. और वहां पर जैसे ही उनके अराइवल की न्यूज स्प्रेड हो गई तो बाकी जो रेजिमेंट थे दिल्ली में जो थे वो भी रेबेलियन के लिए तैयार हो गए सारे जितने सिपाही थे. और ब्रिटिश ऑफिसर्स फिर से वहां पर मारे गए, आर्म्स एंड एमिनेशन ले ली गई, बिल्डिंग्स को फायर लगा दिया गया. और वो लोग वहां पहुंचे, सोल्जर्स सारे वहां गैदर हुए जहां पर रेड फोर्ट था, जहां पर बादशाह रहता था. तो उन्होंने डिमांड किया कि हमें बादशाह से मिलना है एंड उसने बोला कि हमें ये ब्रिटिश रूल खत्म करना है तो हमें आपका सपोर्ट चाहिए है, वी वॉन्टेड योर सपोर्ट. एंड बादशाह जो था वो रिलेक्टेंट था, वो नहीं चाहता था कि इस तरीके से वो ब्रिटिशर्स से पंगा ले, लेकिन सोल्जर्स ने बोला कि नहीं आप करो, हम आपके साथ हैं एंड वी वॉन्ट टू मेक यू आर लीडर. नाउ यू कैन सी द फिगर 5, पोस्टल स्टैम्प इशूड इन कमेमोरेशन ऑफ मंगल पांडे. तो ये पोस्टल स्टैम्प उनकी याद में बनाया गया था उनके पिक्चर के साथ. हेयर द मीनिंग ऑफ फिरंगीज इज गिवन, फॉरिनर्स द टर्म रिफ्लेक्ट्स टू एन एटीट्यूड ऑफ कंटेम्प्ट, मतलब घृणा की नजर से देखना उनको. कम टू नेक्स्ट पेज. The aging emperor had to accept this demand. He wrote letters to all the chiefs and the rulers of the country to come forward and organize a confederacy of Indian states to fight the British. This single step taken by Bahadur Shah had great implications. तो अब जो बहादुर शाह थे उनको ये सब चीजें माननी पड़ी क्योंकि जो soldiers थे उन्होंने ये demand किया और वो मना कैसे कर सकते थे जब इतना विश्वास लेकर उनके पास सारे soldiers आए थे. तो उन्होंने letter लिखा जितने भी chief थे जितने भी rulers थे पूरी country में उनको कि आप सामने आओ, हम एक कॉन्फेडरेसी ऑर्गेनाइज करेंगे ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट. और ये जो सिंगल स्टेप बहादुर शाह जफर ने लिया था उसके काफी ग्रेट इम्प्लीकेशंस थे. द मुगल डायनेस्टी हैड रूल्ड ओवर अ वेरी लार्ज पार्ट ऑफ द कंट्री, मोस्ट स्मॉल रूलर्स एंड चीफियंस कंट्रोल डिफरेंट टेरिटरीज ऑन बिहाफ ऑफ द मुगल रूलर. थ्रेटन्ड बाय द एक्सपेंशन ऑफ ब्रिटिश रूल, मेनी ऑफ देम फेल्ट दैट इफ द मुगल एम्परर कुड रूल अगेन दे टू वुड बी एबल टू रूल देयर ओन टेरिटरीज वंस मोर अंडर मुगल अथॉरिटी. तो जो मुगल डायनेस्टी थी उसने काफी लार्ज पार्ट ऑफ द कंट्री पर रूल करके रखा हुआ था. बहुत सारे स्मॉल जो छोटे छोटे चीफियंस और रूलर्स थे वो कंट्रोल किए जाते थे, वो अलग अलग टेरिटरीज कंट्रोल करते थे मुगल रूलर के बिहाफ पर, उनके बिहाफ पर कि हम मुगल शासक हैं, मुगल के अंतर्गत आते हैं, उनके नाम पर वो रूल करते थे. तो ब्रिटिश रूल के एक्सपेंशन के डर से काफी सारे जो मुगल एम्परर थे उन्होंने सोचा कि अगर मुगल एम्परर वापस से रूल कर सकता है, हमारा जो मेन एम्परर है, तो हम खुद भी अपनी अपनी ओन टेरिटरीज में फिर से एक बार रूल कर पाएंगे और मुगल अथॉरिटी चला पाएंगे. द ब्रिटिश हैड नॉट एक्सपेक्टेड दिस टू हैपन, दे थॉट द डिस्टर्बेंस कॉज्ड बाय द इशू ऑफ कार्टेजेस वुड डाई डाउन, बट बहादुर शाह जफर्स डिसीजंस टू ब्लेस द रेबेलियन चैलेंज चेंज द एंटायर सिचुएशन ड्रामेटिकली. Often when people see an alternative possibility, they feel inspired and unthirsted. It gives them the quote hope and confidence to act. Britishers ne socha nahi tha ki aisa kuch bhi hoga. Unhone socha ki jo disturbance create hua hai issue of cartridges ko lekar ye dheere dheere khatam ho jayega. लेकिन बहादुर शाह जफर का जो डिसीजन था जो कि रिबेलियन के लिए उन्होंने लिया था तो पूरी सिचुएशन ही ये चेंज हो गई थी. बल्कि लोग जो थे वो एक अल्टरनेटिव देख रहे थे, एक पॉसिबिलिटी देख रहे थे, इंस्पायर्ड फील कर रहे थे और लोगों को होप, करेज और कॉन्फिडेंस मिला था इस एक्ट को करने के लिए. सी फिगर से बहादुर शाह जफर, इट्स द पिक्चर ऑफ बहादुर शाह जफर, काफी ओल्ड हो चुके थे लेकिन स्टिल ही मैनेज टू फाइट विथ Britishers. Now come to the topic, the rebellion spreads. After the British were routed from Delhi, there was no uprising for almost a week. It took that much time for news to travel, then a spurt of mutinies began. So Britishers jab Delhi mein the, to us time ek hafte tak to kuch bhi koi uprising nahi thi. Aur itna time lagta hai news ko travel karne mein, to kisi bhi mutiny ko dobara shuru hone mein. Regiment after regiment mutinied and took off to join other troops at nodal points like Delhi, Kanpur and Lucknow. After them, the people of towns and villages also rose up in rebellion and rallied around local leaders. Zamindars and chiefs who were prepared to establish their authority and fight to the British, Nana Sahib, the adopted son of late Peshwa Baji Rao, who lived near Kanpur, gathered armed forces and expelled the British garrison from the city. तो एक रेजिमेंट के बाद दूसरे रेजिमेंट में लोगों ने, यानी कि सोल्जर्स ने, अपने जो ऑफिसर्स हैं उनकी बात मानना मना कर दिया और वो एक पूरे ट्रूप को एक साथ लेकर अलग अलग पॉइंट्स पर मिलते थे जैसे कि दिल्ली, कानपुर, लखनऊ में. उसके बाद जितने भी टाउन और विलेजेस में लोग रहते थे उनमें भी जो नॉर्मल पीपल थे, जो सैनिक नहीं थे, उनने भी रिबेलियन ज्वाइन कर लिया था. वो रैली करते थे लोकल लीडर्स के आसपास. जमींदार जो चीफ्स जो थे वो भी प्रिपेयर करते थे, एस्टैब्लिश करते थे अपनी अथॉरिटी और फाइट करते थे ब्रिटिश के अगेंस्ट. नाना साहेब जो थे, जो कि अडॉप्टेड सन थे लेट पेशवा बाजीराव के, जो कि कानपुर में रहते थे, उन्होंने आर्म फोर्सेस को गैदर कर लिया था और एक्सपेल कर दिया था एक ब्रिटिश गैरिजन सिटी से. ही प्रोक्लेम्ड हिमसेल्फ पेशवा, ही डिक्लेयर्ड दैट ही वाज अ गवर्नर अंडर एम्परर बहादुर शाह जफर. द लखनऊ बिरजिस कदर, द सन ऑफ द डिस्पोज्ड नवाब वाजिद अली शाह, वाज प्रोक्लेम्ड द न्यू नवाब. तो जब उनका ब्रिटिश गैरिजन जो था सिटी में, जब पेशवा ने उसे, नाना साहेब ने उसे खत्म कर दिया था, तो उन्होंने बोला कि मैं पेशवा हूं क्योंकि मुझे गवर्नर अपॉइंट किया गया था बहादुर शाह जफर द्वारा. फिर लखनऊ में जो बिरजिस कादर थे, जो कि डिस्पोज्ड नवाब वाजिद अली शाह के बेटे थे, उनको नया नवाब बना दिया गया था. ही टू एक्नॉलेज द सीरिजनिटी ऑफ बहादुर शाह जफर. His mother Begum Hazrat Mehl took an active part in organizing the uprising against the British in Jhansi. Rani Lakshmi Bai joined the rebel sepoys and fought the British along with Tatya Topi and the general of Nana Sahib. Uske baad jab Birjis Kadar ko nawab bana diya gaya tha, to unki jo Begum thi, उनकी जो मतलब मम्मी थी बेगम हजरत महल, उन्होंने भी एक एक्टिव पार्ट लिया इस अपराइजिंग में. लोगों को समझाया कि उनको ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट क्यों जाना चाहिए, उनको एनकरेज किया. और इसी तरीके से और भी जो महिलाएं थी उन्होंने ज्वाइन किया, जैसे कि रानी लक्ष्मीबाई झांसी में, उन्होंने भी रिबेल सिपॉयज को ज्वाइन कर लिया था और फिर उन्होंने भी ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट लड़ा था तात्या टोपे और जो जनरल ऑफ नाना साहेब थे उनके साथ. इन द मंडला रीजन ऑफ मध्य प्रदेश, रानी अवंती बाई लोधी ऑफ रामगढ़ रेस्ड एंड लेड एन आर्मी ऑफ 4,000 अगेंस्ट द ब्रिटिश हु हैड टेकन ओवर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ हर स्टेट. तो मंडला रीजन जो था मध्य प्रदेश में, वहां पर रानी अवंती बाई लोधी ने रामगढ़ से एक आर्मी अगेंस्ट में भेज दी थी ब्रिटिशर्स के. 4,000 लोगों की आर्मी थी और वो एडमिनिस्ट्रेशन अपने स्टेट का वापस लेना चाहती थी. दैट इज वाई शी डिड ऑल दैट. नाउ कम टू द प्रीवियस पेज अगेन. You can see figure 7 of Rani Lakshmi Bai and figure 8. As the mutiny spread, British officers were killed in cantonments. So, yahan par British officers ki killing batai ja rahi hai cantonments mein. Okay, so we end up our chapter, our class here. From the next class, we'll start with the second paragraph on the page number 58. So, till then, please keep revising.
सुनो किताब से सुनने के लिए आपका धन्यवाद।